हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जलाल की गाड़ी उसी अड्डे पर आकर रुकी जहाँ से हमेशा ही साहिल, मोहिनी, रूहान अपना काम करते हैं। रूहान का वो सीक्रेट काम जिसे वे किसी की आंखों के सामने नहीं आने देना चाहता। ऐसा नहीं है कि वो काम बड़ा है, लेकिन रूहान को लगता है कि उसे ये सब कुछ बिना क्रेडिट लिए करना चाहिए। वो एक वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू टीम का मेंबर है और ये टीम उसने खुद बनाई है। उसके दोस्तों की टीम जंगल के इलाके में इतने जानवर रोज परेशानी से जूझते हैं जिनकी मदद रूहान करना चाहता है। रूहान को इंसानों में कभी भी इंसानियत नज़र नहीं आई, न ही उनके लिए कभी हमदर्दी जगी है। इंसान अगर उसके सामने तड़प कर मर भी जाए तो उसे कोई फ़िक्र नहीं, लेकिन जब वही चीज़ बेजुबान जानवरों के साथ होती है तो उसका दिल पिघल जाता है। इसी काम के चलते उसकी मुलाकात उसकी शुगर बेबी से हुई थी, जब उसकी मदर ठंड के कारण मर गई और अपनी तीन औलादों को ऐसे ही जंगल में करने के लिए छोड़ दिया था। रूहान उन तीनों बच्चों को बचाना चाहता था, लेकिन उनमें से दो मर गए और उसकी शुगर बेबी बायलक ठीक हो गई, जिसके बाद से वो अब तक उसी के पास है। उसे पता है बिल्लियों की जिंदगी बहुत कम होती है, इसलिए कभी कभी उसे बुरा भी लगता है कि उसकी शुगर बेबी जल्दी उसे छोड़कर चली जाएगी और वो फिर से अकेला हो जाएगा। अड्डे पर पहुंचने के बाद रूहान ने देखा कि मोहिनी काफी हड़बड़ाहट में दिख रही थी। मोहिनी ने अपना लैपटॉप रूहान की तरफ करते हुए कहा, इस बार एक तेंदुआ उस जाल में अटक गया है जिससे पिछली बार हमने हिरण को बचाया था। मुझे तो बहुत डर लगता है इससे। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों नहीं जाएंगे, इस बार रूहान और जलाल जाएंगे। जलाल ने हंसते हुए कहा, अरे यार, आज हमारा रूहान बाबू तो बहुत ज्यादा परेशान है, पता नहीं काम पर ध्यान दे भी पाएगा या नहीं। मोहिनी ने आंखें छोटी करते हुए कहा, आखिर ऐसा भी क्या हुआ है जो भगवान इतना ज्यादा परेशान है? किसी ने कुछ कहा है क्या, या फिर आज फिर से आंटी से लड़ाई हुई है तुम्हारी, या डॉक्टर के पास जाकर आए हो? ये तीन चार कारण थे जिससे रूहान परेशान हो सकता था, लेकिन फिलहाल इनमें से कुछ नहीं हुआ था। जलाल ने मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की और सारी बात मोहिनी और साहिल को बता दी। रूहान ने उसे बताई थी कि कैसे मन उसे फर्स्ट आने पर किस देने वाली थी, लेकिन वो बेचारा सेकंड आ गया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉइंट से, और उसका ये इतना अच्छा मौका उसके हाथ से निकल गया है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। थोड़ी देर पहले जहाँ रूहान की हालत पर सिर्फ उसका एक दोस्त हंस रहा था, अब उसके तीनों दोस्त पेट पकड़कर उसके इस हालात पर हंस रहे थे, जिसे देखकर रूहान ने गुस्से में वो कॉस्ट्यूम उठाया जिसे पहनकर वो जंगल में जाता है और फिर उसे पहनते हुए बोला, तुम लोग दोस्त नहीं हो, दुश्मन हो मेरे यहाँ। मुझे सहारा देने के बजाय मेरी हालत पर हंसे जा रहे हो। क्या मैंने कोई जोक सुनाया है तुमको? हंसना बंद करो। जलाल ने भी अपने कपड़े पहन लिए और फिर मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए बोला, अरे यार क्या करें, तुम हो ही इतने फनी। तुम्हें पता है तुम कितनी क्यूट लग रहे हो ये बोलते हुए कि तुम्हारी मैडम जितनी की नहीं देने वाली है। सच में हमें भी तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, लेकिन बुरा लगने से ज्यादा हमें हंसी आ रही है। लोगों के बड़े बड़े रिवॉर्ड छूट जाते हैं कुछ पॉइंट्स की वजह से, उसके बाद भी उनको इतना धोखा तो नहीं होता होगा जितना तुम्हें हो रहा है। इतना मातम कोई नहीं मनाता है सिर्फ फर्स्ट की बजाय सेकंड आने पर। और वैसे भी अपनी मैडम जी को बोल देना कि बहुत मेहनत की थी मैंने, क्या पता तुम्हारी मेहनत से खुश होकर ही वो तुम्हें किस कर दे। रूहान ने घूर कर जलाल की तरफ देखा और फिर वे दोनों ही वहाँ से बाहर चले गए। उनके ऊपर एक ड्रोन उड़ रहा था जिसके वजह से मोहिनी और साहिल दोनों उस पर नजर रख सकते थे। उन्होंने जंगल के अलग अलग इलाकों में सीसीटीवी लगाया था ताकि जब भी किसी जानवर को जरूरत हो उनमें से कोई न कोई वहाँ पर हो। उन्होंने अपनी इस टीम में बाकी लोगों को भी शामिल करने के लिए इन्विटेशन दिया था, लेकिन कोई भी शामिल नहीं हुआ। अब उन दोनों सबने सोचा था कि वे पैसे देकर लोगों को हायर करेंगे, क्योंकि दिन में तो वे सब यहाँ रह सकते हैं, लेकिन रात के वक्त उनकी फैमिली उन्हें अलाउड नहीं करेगी, सिवाय रूहान के। वो तो कई बार रात को भी यहाँ आ जाता है क्योंकि उसे पूछने वाला कोई है नहीं। अब की हालत कुछ अलग है, उसकी मैडम जी उसे पाल पाल की खबर लेती है, इसलिए अब तो उन्हें किसी न किसी को हायर करना ही पड़ेगा। रूहान और जलाल तेज कदमों से चलते हुए आगे बढ़ रहे थे, उनके पास बंदूक भी थी, हाथों में अजीब से ग्लव्स थे जिन पर कोई भी जानवर अपने दांत नहीं लगा सकता था। शरीर पर मौजूद जैकेट का कपड़ा भी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग था कि कोई भी जानवर आसानी से उन्हें मार नहीं सकता था। रूहान के हाथ में एक इंजेक्शन था जो किसी भी जानवर को कुछ देर के लिए नींद में सुला सकता था। वे तेज कदमों से चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। सूखे पत्तों पर पांव लगने से वहां आवाज हो रही थी। वहीं जो तेंदुआ फंसा हुआ था उसने जैसे ही कदमों की आहट सुनी वो जोर से गुर्राया, जिसे सुनकर एक पल के लिए जलाल ने रूहान की तरफ देखा और फिर वे दोनों और भी ज्यादा तेज कदमों से चलते हुए उसके पास गए। उसे तेंदुए के दोनों पंजों में तार चुभे हुए थे। रूहान ने जल्दी से बंदूक में वो इंजेक्शन लगाया और फिर उसे तेंदुए की तरफ फायर कर दिया। वो इंजेक्शन जैसे ही तेंदुए की पीठ पर जाकर लगा, तेंदुआ दर्द से और भी ज्यादा जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि एक पल के लिए जैसे पूरा जंगल गूंज उठा था, लेकिन कुछ पलों में वो शांत होकर वहीं बेसुध होने लगा। जिसे देखकर रूहान तेज कदमों से आगे बढ़कर बोला, तुम आसपास ध्यान रखो, कोई और जंगली जानवर न आ जाए, तब तक मैं इसका ट्रीटमेंट करता हूँ। इतना बोलकर उसने अपनी पीठ पर टंगा बैग उतारा और फिर उसमें से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। उसने सबसे पहले कटर से उसे तार को कट किया जो तेंदुए के पैर में था और फिर संभालते हुए उसे जमीन पर लिटा दिया। उसने जल्दी से उसके पांव से वो तार निकाल जिसके साथ ही वहां तेंदुए का खून बहने लगा। तो आता ने जल्दी से फास्ट एड बॉक्स निकालते हुए उसकी मरहम पट्टी की और फिर उसे तार को देखते हुए बोला, पता नहीं ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले क्या क्या करते रहते हैं जिनके वजह से बेचारे जानवरों को इतनी परेशानी होती है। लगता है यहाँ पहले कोई पुराना कैंप था जो अब नहीं है, लेकिन उसका ये टूटा फूटा सामान यहीं रह गया है। जलाल ने इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए कहा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जल्दी से इसे हटा दें यहाँ से, फिर हम चलते हैं वापस। रूहान ने हाँ में सर हिलाया और फिर उसे जल को राउंड शेप में करते हुए एक पेड़ की जड़ों के पास रख दिया ताकि फिर से कोई जानवर तेजी से दौड़ता हुआ आए तो वह उसमें ना उलझे। उसके बाद वे तेज कदमों से चलते हुए वहां से जाने लगे। शाम के करीब 3 बजे अनाही की गाड़ी निमानी हाउस के सामने आकर रुकी। वो गाड़ी से निकलकर बाहर आई और फिर तेज कदमों से चलती हुई घर के अंदर आ गई। माधवी ने उसे इतना जल्दी आता देखकर सोफे से उठकर कहा, बेटा तुम आज जल्दी कैसे आ गई, अभी तक तो 3 ही बजे हैं, यहाँ तक कि रूहान भी नहीं आया है। ये सुनकर अनाही ने आंखें छोटी करते हुए कहा, पर उनका कॉलेज तो कब का छूट लुका था और वो ऑफिस भी नहीं आए, तो मैंने सोचा मैं ही घर आ जाती हूँ। माधवी ने मन ही मन अनाही को कोसते हुए कहा, हाँ जब भी तुम्हें मौका मिलता है तो मिल्खा सिंह बनकर भागते हुए उसके पास आ जाती हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
अनाही ने माधवी से ज्यादा बात नहीं की और फिर सीधा अपने कमरे में चली गई। वो जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आई और फिर किचन में जाते हुए अपने फोन से रूहान का नंबर डायल करने लगी। वही जो रूहान गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसने जैसे ही अनाही का नाम फ्लैश होते देखा तो उसने जल्दी से कॉल उठाते हुए कहा, जी मैडम जी। अनाही ने धीरे से कहा, आप कहाँ हैं, अभी तक घर वापस नहीं आए? रूहान ने जल्दी से कहा, क्यों आज आप ऑफिस नहीं गई, आप घर पर क्या कर रही हैं?